दौला पुस्तक 9, 12 लेक्चर नंबर 9। ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिर्णये जिनेनमिउं वेयण महाहियारम् विविहयारम् परुएमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो चौथा वेदना खंड चल रहा है अपना, और अपना विषय है वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार। इस 12वीं पुस्तक की 55 नंबर के पृष्ठ पर हम आ गए हैं, 55। देखो ये सूत्र पढ़ने के पहले उसका स्पष्टीकरण। प्रश्न क्या है आपका तेजल? हाँ देखो देखो, आपका प्रश्न है ये अनुभागों का जो अल्प बहुत्व बताया है वो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि पहले क्या देखा था, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट की कंपैरिजन हो रही है। ये जो 64 पद वाला उत्कृष्ट महादंडक जो बताया है, ये सूत्रों में और अलग अलग जिसको कहेंगे स्पष्ट करके बताया। पहले इन्हीं 64 नामों की बात गाथाओं के में आई थी, अब सूत्रों में इसलिए कहते हैं कि ये ऐसे क्यों होता है उसकी चर्चा है। किसी भी प्रकृति का अनुभाग होता है, पहले जहाँ पुण्य और पाप दोनों प्रकृतियाँ होती है वो आघाति में होती है, तो अशुभ प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग से या कहीं पर भी जिसका अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग है उससे शुभ प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणा होता है, ये बात हो गई। अब यहाँ तो इन सभी प्रकृतियों में टोटल लगा रहे हैं। अभी सभी प्रकृतियों में क्या क्या लिया है, तो घाती की सभी लिए बंधने वाली, यह अनुभाग बंध की अपेक्षा है। ये 64 जो अनुभाग का महादंडक कहते हैं, अधिक से हम हीन तक यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो ये 64 में हमने देखे थे कि बंधने वाली घाती कर्म कितने हैं। हाँ 45 बराबर, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बनती नहीं है। अब अघाती में साता और असाता, चार आयु, उच्च नीच गोत्र, परंतु 93 नाम कर्म में से केवल उन्होंने गति चार ली है और फिर शरीर पांच लिए हैं, यश कीर्ति और यश कीर्ति लिए, इतनी ही चर्चा है। बाकी विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे, अभी तो इतनी ही प्रकृतियों की बात है। यानी ये 64 प्रकृतियों का अल्प बहुत किस अपेक्षा से, अनुभाग की अपेक्षा से। नहीं, पांचों ही शरीर प्रशस्त कर्म है, पांचों ही प्रशस्त है। तो मिथ्यात्व अशुभ प्रकृति है एक, तो उसका जो अनुभाग है, देखो प्रत्येक प्रकृति का अनुभाग कितना है तो ये हम आप नहीं जानेंगे, तो केवल ज्ञानी जानेंगे। हाँ केवल ज्ञानी जानेंगे, और वो भी अविभाग प्रतिच्छेदों की जो चर्चा आती है ना, तो उसमें भी वो स्पर्श गुण के छेद किए हैं, पता नहीं है कैसे क्या है। अभी कल आपने प्रश्न पूछा था ना कि प्रत्येक कर्म का अपना अपना जुदा जुदा होना चाहिए, इसके लिए मैं अभी कल ये भी फोन आया था विकास जी जैन इंदौर वाले, अभी कुंभोज में उनका ये चल रहा है धवला पुस्तक पर, वहाँ शिविर चल रही है अभी, और वहाँ से फोन आया था कि ये हत समुत्पत्ति किस में होता है, क्या केवल निगोद में होता है कि केंद्र में होता है कि ऊपर के जीवों में भी होता है। तो उसके लिए मैंने अभी धवला की 5वीं पुस्तक निकाली है, उसमें अनुभाग का स्थान किसको कहना उसकी बहुत स्पष्ट बात बताई है, अनुभाग स्थान किसको कहना। जैसे हम योग स्थान में तो हमने वर्ग वर्गणा सब पूरी टोटल जो जीव के जितने प्रदेश होते हैं उसमें जो टोटल उसका होगा उसको वर्ग योग स्थान कहा था, वैसे अनुभाग में नहीं लगा रहे। जो मैक्सिमम पॉसिबल जितना अनुभाग जिन परमाणुओं में बंधा है उनकी एक वर्गणा होती है, पर उसमें से एक परमाणु में जो अनुभाग है मैक्सिमम वाला, उस अविभाग प्रतिच्छेदों की जो संख्या उसी को अनुभाग स्थान कहने में आता है। ये थोड़ी विशेषता है यहाँ पर, वो इसमें से पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। देखो देखो किसको होता है वो बात अलग है, वो स्वामित्व में आता है, और कितना होता है उसमें अल्पबहुत तो चल रहे हैं। हाँ इन जनरल ऐसा है, परंतु उत्कृष्ट से उत्कृष्ट की बात चल रही है। देखिए औदारिक शरीर का जो उत्कृष्ट होगा और उससे मिथ्यात्व का जो उत्कृष्ट है वो अनंत गुणाहीन है, ये समझना है। औदारिक शरीर का जघन्य भी अनुभाग बांधेंगे कोई? यहाँ कंपैरिजन किसकी चल रही है? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। हाँ ये प्रकृति का अपना उत्कृष्ट अनुभाग कितना है उसकी बात चल रही है। अब ये जरा अनुभाग की बात, हम अनुभाग स्थान किसको कहना और उसकी जरा चर्चा यहाँ से लेते हैं। क्योंकि यहाँ अनुभाग, वहां तो प्रकरण अनुभाग विभक्ति का है, परंतु ये नहीं सत्ता वाला, वो बंध की भी अपेक्षा होती है और उसकी भी आती है। स्थान 330, क्योंकि अनुभागों की जब तक वो स्पष्टता नहीं होती तो हम क्या पढ़ रहे हैं वो कुछ समझ में नहीं आते हैं। चुली का में उसकी बात उन्होंने और समझाई है। हाँ देखो अभी मैं यहाँ से कुछ पढ़ती हूँ, मैं पेज नंबर 330 पर पढ़ रही हूँ। स्थान प्ररूपना जो है कषाय पाहुर जय धवला जिसका नाम है, पांचवी पुस्तक है। सत्कर्म स्थान तीन प्रकार के, यहाँ सभी अनुभाग की बात चल रही है। अनुभाग का सत्कर्म सत्ता में कितना अनुभाग है तो उसमें तीन कैसे बंध समुत्पत्ति, यानी बंध की अपेक्षा बंध से उत्पन्न स्थान, हत समुत्पत्ति जो अपने अभी बहुत बार उसका ये उद्धरण यानी आग्रह विषय आ रहा है, यानी बंधने के बाद जो अनुभाग घात हो जाता है कटौती होती है तो उसको हत समुत्पत्ति स्थान कहते हैं, और हत हत समुत्पत्ति। अब उसकी बहुत चर्चा नहीं करनी है हमें, तो स्थान किसको कहना उसकी बात यहां देखनी है। देखो कर्म का बंध होने पर जिस कर्म स्थान की प्राप्ति होती है, कर्म स्थान यानी अनुभाग स्थान, उसे बंध समुत्पत्ति कहते हैं, यानी बंध से उत्पन्न होने वाला सत्कर्म स्थान। और कर्म स्थान का यानी अनुभाग स्थान जो बांधा हुआ है उसका घात किए जाने पर जो स्थान उत्पन्न होता है उसे हत समुत्पत्ति कर्म स्थान कहते हैं, यानी बंधने के बाद वो नियम से उसका अंतर्मूर्त में घात होता ही होता है। और वो यानी देखो बंध के जो स्थान है यानी विशिष्ट प्रकार का जितना बंध हुआ वो इन बिटवीन अगर होता है तो उसको हम हत समुत्पत्ति स्थान कहेंगे। बंध जितना अनुभाग ही वो घट कर होता तो उसको बंध समुत्पत्ति ही कह देते हैं। देखो देखो पहले में पहले बंधा हुआ जो है, बंधे हुए में स्थान किसको कहेंगे? जो उत्कृष्ट अनुभाग है उसको स्थान कहेंगे। अभी उसका घट गया, उसका अनुभाग घट गया, और घटकर कितना हुआ? तो कि बंधे हुए तो बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं, प्रत्येक परमाणु अलग अलग वेरिएशन है, तो पूर्व में बंधे हुए जैसे उनका अनुभाग हो जाए तो उसको बंध स्थान में ही गिनेंगे, परंतु दो स्थानों के बीच में जैसा अनुभाग उसका हो जाए तो उसको कहेंगे ये हत समुत्पत्ति। उसके बहुत विषय विशेषताएं हैं, विस्तार बहुत है, वो अभी अपना विषय नहीं है। ये होता हर एक का होता रहता है, उत्कृष्ट अनुभाग का भी।
मेरी समझ ऐसी
मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा था, इसीलिए कल वो जो प्रश्न वहां से आए ना, कुंभोज से प्रश्न हुए थे, वहां भी चर्चा चली, तो इसीलिए मैं सुबह जो 4 बजे उठकर मैं ढूंढती रही वो कितना होता है क्या होता है वो तो सब। यानी ये तो यहाँ ये बात कहते हैं सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त तक के जो स्थान है वहां से लेकर जितने सारे बंधने बंध योग्य स्थान है उसको एक पंक्ति में लिखना है। तो बंध योग्य स्थान है पंचेंद्रिय तक के सब ले लेंगे।
एक दूसरा क्वेश्चन भी उठता है, वो तो 4-5 दिन से मेरे को
हाँ, और दूसरा क्या प्रश्न है हाँ,
क्या पंचेंद्रिय में अनुभाग सबसे ज्यादा होता है, एकेंद्रिय में अनुभाग कम होता है?
एक मिनट, अभी एकेंद्रिय में अनुभाग ज्यादा होता है कि कम होता है अभी उसकी जो बात है ना,
क्योंकि हमने देखा हस्तक्षेपोत्पत्ति में अनुभाग कांडक काटी होते
हैं। नहीं नहीं, देखो
सिद्धि का तो होते ही रहते हैं एकेंद्रिय में ज्यादा।
अभी ऐसा मत कहो एकेंद्रिय में ज्यादा होता है क्या पंचेंद्रिय में ज्यादा होता है 179, क्योंकि इसके लिए अभी वही पुस्तक पूरी पढ़नी चाहिए है ना। एक तो प्रकृति वाइज तो अनुभाग तो हमने देखा था, परंतु सुबह मैंने पेज नंबर यहाँ रखे नहीं है, परंतु वहां तो अनुभाग हमने देखे थे पंचेंद्रियों में जितना बनता है उसे नीचे नीचे में ज्यादा अनुभाग बनता है, इस तरह से हमने देखे थे उसमें। अभी वो निकाल के फिर मुझे देखना पड़ेगा, मैं फिर बताऊंगी आपको ये सारे आपके प्रश्न।
नहीं
देखो देखो, ये वहां से निकाल कर मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि कौन कितना अनुभाग बांधता है उसकी सब इसमें चर्चा है।
उत्कृष्ट हमने देखे देखा पंचेंद्रिय में होगा अभी में।
अभी वो सभी हम यहाँ से देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत विस्तार है। आप कल पुस्तक ले आना
5वें नंबर
की, फिर हम उसमें चर्चा करेंगे। जय धौला की हाँ
आपको याद है तो आप बताओ,
उसमें सारे अल्पबोध तो देखे ही देखे थे और मैंने सुबह आज पढ़ा मगर मुझे अभी मिल नहीं रहा, अभी ढूंढने में टाइम जाने से पहले अपना नहीं आप पढ़ के भी आना, आप स्वयं पढ़ के आने है पूरा।
मैंने 2 बार आपको पूछा था कि जब भी स्थिति कांडक घात होते है तभी अनुभाग कांडक घात क्या होता है, एक भी
जरूरी नहीं है क्योंकि स्थिति कांडक घात सभी प्रकृतियों में होते प्रशस्त अप्रशस्त, अनुभाग कांडक घात अप्रशस्तों में होगा
अप्रशस्त में होगा
हाँ।
पर तो अप्रशस्त में जो पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट अनुभाग देखते हैं,
देखो वो पंचेंद्रियों में क्षपक श्रेणी में अन्य पंचेंद्रियों में बात अलग अलग है,
अप्रशस्त कर्मों का घाती कर्मों का
घाती
हाँ। हमने बुक में ऐसा पढ़ा कि अप्रशस्त में घाती कर्मों का अनुभाग सबसे ज्यादा है, तो वहाँ पे
अभी जो सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा है नहीं, अभी हम जो अल्प बहुत देख रहे वैसे सबसे ज्यादा कहाँ है
उत्कृष्ट कहाँ पे देखा हमने संगीत पंचेंद्र,
देखो अभी इसका स्वामित्व कहाँ आया है
हमने देखा ना साकार उपयोग वाला उत्कृष्ट
वो बंध की बात है बराबर है हाँ।
तो बंध वहाँ पे इतना होता है तो वहाँ पे उदय कैसे होता है, क्योंकि उत्कृष्ट बंध हुआ वहाँ पे उत्कृष्ट अनुभाग का बंध हुआ है और उत्कृष्ट अनुभाग का उदय हो रहा है तो वहाँ पे
देखो उदय डिपेंड्स, क्योंकि बंधा हुआ उतना ही उदय मानेंगे तो एकेंद्रियों के भी उतना माना पड़ना पड़ेगा हाँ, क्योंकि मरकर पंचेंद्रिय मरकर एकेंद्रिय में गया है तो उसके उत्कृष्ट उदय मानना पड़ेगा, और एकेंद्रिय मरकर पंचेंद्रिय में आया है उसको इतना जघन्य उदय मानना पड़ेगा, फिर उसको बंध उदय कैसे मैक्सिमम कैसे होगा। ये जो चर्चा है ना वो अभी छोड़ दो, अभी हमको अनुभाग स्थान में अभी मेरी भाषा में समझाती हूँ, अनुभाग स्थान किसको कहना, तो अनुभाग यानी जो बंध होता बंध में चल रही बात, बंधे हुए में अनुभाग स्थान किसको कहना, अभी योग स्थान जैसे अनुभाग स्थान मत समझो, योग स्थान में सभी प्रदेशों को हम एक रचना करते वर्गना वगैरह और सबका मिलकर जो एग्रीगेट जो योग है उसको योग स्थान कहते हैं, अनुभाग स्थान में ऐसा नहीं है। अनुभाग स्थान जितना मैक्सिमम जैसे हमने स्थिति कितनी बंधी तो हम कहेंगे 70 कोड़ा कोड़ी के बंधी, अब अनुभाग कितना बंधा तो अनुभाग में जो उत्कृष्ट स्पर्धक है अभी निषेक नहीं स्पर्धक जो उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट स्पर्धक की जो उत्कृष्ट वर्गना है उसमें प्रत्येक परमाणु में जितना अनुभाग है उसको वहां अनुभाग का स्थान कहने में आता है। एक परमाणु में जितने अनुभाग है उसको ख्याल में, यानी प्रत्येक ऐसा एक ही परमाणु नहीं है, ऐसे अनेक परमाणु है। अनुभाग स्थान, अनुभाग स्थान किसको कहना? तो जो मैक्सिमम अनुभाग वाले परमाणु है उसको कहना,
वहां पे जो अनुभाग है
हाँ, तो उसका जो अनुभाग है हाँ, एक वर्ग में जो मैक्सिमम अनुभाग वाला जो परमाणु है हाँ उसको स्थान कहेंगे, उसके अविभाग प्रतिच्छेदों के प्रमाण को ही स्थान कहेंगे। देखो हाँ देखो, स्वामित्व में तो हमने देखा था कि वो संगी पंचेंद्रिय वाला वही होगा, और जब तक उसका घात नहीं होता तभी हमने उसको स्वामित्व कहा था, बराबर है ना?
और हमने पहले एक बार ऐसे भी देखा था कि प्रत्येक निश्चय के अनुपात का जो
सब में होता है हाँ,
जो जगने से लेकर उत्कृष्ट
सभी होते वो तो निश्चित है ही है, और वो तो मैंने इसमें से पढ़ के भी बताया था बहुत बार। ये मुझे बताना था कि अंतिम वो परमाणु की उसकी अनुभाग स्थान संज्ञा है, ये मुझे मिल नहीं रहा। मैंने इतना दो तीन जगह लिखा, एक जगह नहीं है। स्थानों की बात जो है ना, अनुभाग स्थान शायद उसमें चलो कल ही मैं ढूंढ के फिर उसमें
विषय परिचय ही होगा
सब। नहीं नहीं
विषय परिचय ही होगा,
विषय परिचय में भी था आगे भी था, अभी मुझे नहीं मिल रहा है, मैं अभी ढूंढने में टाइम नहीं बताऊंगी। उसमें आपको उसमें मिल जाएगा अनुभाग स्थान जिसको कहेंगे ना, देखो यहाँ उदय की बात नहीं चल रही है और उसमें अलग अलग होगा, परंतु जो जैसा उस जीव का परिणाम है जैसा है, देखो यहाँ पर भी यहाँ लिखी है उन्होंने शंका में लिखा है हाँ? अनुभाग स्थान किसमें पन जो रेफरेंस दिए वो अच्छा उसमें खाली पेज नंबर देंगे ना, अनुभाग स्थान 4.452 अरविंद भाई को फटाफट मिलता है, ये जैन सिद्धांत कोश में देखेंगे हम। धौला और जय धौला का नहीं है क्या यहाँ पर? धौला के उत्पत्ति स्थान, केवल स्थान की बात है उन्होंने, स्थान सामान्य अनुभाग के अर्थ में लब्धि सारिक जी के एक विषय हाँ, अनुभाग स्थान सामान्य लक्षण ये कषाय पाहुड़ पांचवे की पेज नंबर है 336। देखो यहीं से मैं पढ़ती के बताऊंगी, इसी पांचवे पुस्तक का ही है। अंतिम स्पर्धक की अभी जो बताया ना, अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में स्थित अनुभाग के अविभाग अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में स्थित अनुभाग के अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को अनुभाग स्थान कहते हैं, यानी नंबर ऑफ अनुभाग जितने उसके अविभाग प्रतिच्छेद एक अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में, नहीं प्रत्येक परमाणु में, क्योंकि वर्गणा उसी को कहते हैं कि प्रत्येक परमाणु उतना का अविभाग प्रतिच्छेद वाला है, उस स्थित अनुभाग के अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को, यानी नंबर ऑफ अविभाग प्रतिच्छेदों को, हाँ यानी एक प्रत्येक परमाणु का अपना अपना अनुभाग है, उसी की अपेक्षा हमने उसके अलग अलग नंबरिंग किए, स्पर्धक वर्ग वर्गणा कहते हैं, है ना, अनुभाग के अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को। ये 336 पर था, मैं अन्यत्र ढूंढ रही थी, ठीक है, 336 पेज पर ये बातें थी। यहीं से यही बात यहाँ लिखी है, स्थान पर उपना जना में जहां मैंने पढ़ना शुरू किया था ना 330 पेज पर, उसके बाद ये बात यहाँ आती है। ये पेज नंबर 336 पर बात लिखी है जो हमने अभी पढ़ के बताई आपको। तो कहते अनुभाग के अविभागी प्रतिच्छेदों का समूह रूप वह अनुभाग स्थान, ये जो अनुभाग स्थान किसको कहें, अंतिम वाला, उत्कर्षण से नहीं बढ़ता है क्योंकि बंद के बिना उसका उत्कर्षण नहीं बन सकता। उस बंद जब अधिक अनुभाग वाला बंधेगा तब उसका उत्कर्ष, तो वो तो स्थान तो वही कहलाएगा जो बंधा हुआ है, यानी बंध के द्वारा वृद्धि को उत्कर्षण वृद्धि कहते हैं, वही भी नहीं है क्योंकि बंध में तो उत्कर्षण की मुख्यता नहीं, बंध की मुख्यता है। अधिक अनुभाग बंधा तो बंध के द्वारा ही वो स्थान हो गया, ये कहना चाहते हैं, यानी उसमें बहुत सारी चर्चा है उसके। तो प्रश्न यही पूछा गया था कि ऐसा अगर हम एक परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेदों को जो अगर हम अनुभाग स्थान कहेंगे, तो जो हम जघन्य से लेकर वर्ग वर्गणा स्पर्धक इतने अनंत स्पर्धक पूरे इतने सब हमने टोटल जो स्ट्रक्चर रचना देखी थी वो फिजूल की हो जाएगी, क्योंकि योग स्थान में तो हम सबको कंसिडर करके एक योग स्थान कह रहे थे। तो कहते यहाँ ऐसा नहीं है, यही शंका पूछी कि अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में स्थित अनुभाग को अनुभाग स्थान मानेंगे तो एक अनुभाग स्थान में अनंत स्पर्धक होते हैं, ये सूत्र में ही बताया, उसके साथ विरोध आएगा। बताया क्या, एक अनुभाग स्थान में अनंत स्पर्धक होते हैं, क्योंकि अनुभाग स्थान किसको कहते हैं, अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेदों को। तो कहते इतने अंतिम स्पर्धक एक अनुभाग स्थान में होते हैं, ऐसा अगर कहेंगे आप तो एक परमाणु की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ विरोध आएगा। तो उसके समाधान में कहते हैं ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि जघन्य अनुभाग स्थान के जघन्य स्पर्धक से लेकर ऊपर के सब स्पर्धक उसमें पाए जाते हैं। हमने हमेशा देखा जब यह अनुभाग की कोई भी अनुभाग की चर्चा करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होगी, पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा से लेकर। वो जघन्य कैसे कहेंगे, जो अनुभाग स्थान किसका नाम है, अंतिम, किसी में एक एक वर्गणा पाई जाती है, ऐसा कभी होगा नहीं, मिनिमम भी अनंत स्पर्धक तो होगे ही होगे, और सभी स्पर्धक जो 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 अनुभाग स्थान है उसको हम यानी 1 2 3 वहां से हम काउंट करेंगे, कहेंगे अनुभाग स्थान किसको, अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में स्थित अनुभाग। फिर प्रश्न पूछ रहे हैं कि उसको अगर हम अनुभाग स्थान मानेंगे तो एक अनुभाग स्थान में जघन्य वर्गणा से लेकर उत्कृष्ट स्थान की उत्कृष्ट वर्गणा पर्यंत बते हुए प्रदेशों के रहने का जो कथन किया जाता है वो नहीं रहेगा, क्योंकि एक परमाणु में आप इतने कैसे परमाणु मानेंगे, ये उनका प्रश्न है। यानी वहां कहते उत्कृष्ट अनुभाग वाला एक ही परमाणु नहीं है, उस वर्गना के अनंत परमाणु उत्कृष्ट अनुभाग वाले, समान अनुभाग वाले, उसमें से हम केवल अनुभाग को कंसीडर कर रहे हैं कि स्थान किसको कहना है। इसलिए अनुभाग स्थान की उत्तरप्रम। अभी मैंने तो यहाँ लिख के रखा है, कर्मकांड के पूर्वार्ध में भी यही चर्चा की थी, अभी तो वो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि योग स्थान की चर्चा वहां आई थी। योग स्थानों में हमने देखा था कि योग स्थान में भी जीव प्रदेशों को हमने वर्ग कहा था, और जिन जीव प्रदेशों में समान अनुभाग होता है उनको हमने वर्गणा कही थी, याद होगा। तो
क्या जब भी हम लोग देखते हैं अनुभाग कांडक घात होते हैं, तभी उत्कृष्ट अनुभाग है वो कम होता है कि वो परमाणु कुछ ऐसे स्थित रहते हैं और कुछ परमाणु में कटौती हो जाती है अनुभाग?
देखो, कुछ परमाणु में कटौती होगी तभी तो कांडक घात कहेंगे।
बराबर, कांडक घात, पर जब भी कांडक खत्म होने वाला है,
कांडक की अंतिम फाली खीरी, उसका अर्थ क्या है? अभी उस उत्कृष्ट अनुभाग वाला एक भी परमाणु वहां नहीं रहा, अनंत स्पर्धकों का नाश हो गया, उन परमाणुओं का अनुभाग नीचे के, हाँ वैसा हो गया, उसको कांडक घात कहेंगे। अभी जरा विषय हम पढ़ेंगे आगे। अनुभाग स्थान की बात अभी मैंने पढ़ी आपको, अभी उसके वो तो उसके बहुत विशेषताएं हैं कि वो अनुभाग घात होकर किस समान हो जाता है, अभी वो चर्चा अभी नहीं करनी है। कल हम जहां तक देखा ना हमने, उसके आगे पढ़ेंगे। अभी अपना पेज नंबर 55 निकालना। ये जो हम अल्प बहुतो देख रहे थे, उत्कृष्ट का उत्कृष्ट के साथ हम देख रहे थे, और वहां हमने कहां से शुरुआत की थी, ये जो गाथा में जो नाम बताए थे कि साता वेदनीय का सबसे उत्कृष्ट होता है, वो सब हम देख के आए हैं। और हम, हाँ देखो, ये बात हमने वहां से शुरू की थी, 45 पेज से शुरू की थी। साता वेदनीय के बाद यश कीर्ति उच्च गोत्र एट ए टाइम लिया था, अनंत गुना ही, उसके बाद देवगति, उसके बाद कारमान शरीर, उसके बाद तेजस शरीर, उसके बाद आहारक, बाद में वैक्रेग, फिर मनुष्य गति, और फिर औदारिक शरीर। अब ऐसे क्यों क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा जो उसके रीजनिंग तो उन्होंने बता दिए थे। फिर मिथ्यात्व, ये आपका प्रश्न इसके बारे में था, औदारिक शरीर प्रशस्त है और यह अप्रशस्त है। फिर केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शन, असत और वीर्यंतरा, एक एट पोजीशन पर। फिर अनंतानुबंधी के चार लेना, पर वो विशेषहीन लेना, लो मा क्रो मा। अनंतानुबंधी के बाद संज्वलन के लिए, संज्वलन के बाद प्रत्याख्यानावरण चार लिए। हाँ देना है, कल हमने दिए थे, लास्ट टाइम हमने नहीं दिए थे, अब इस टाइम फिर दोबारा लेके प्रत्याख्यानावरण के बाद अप्रत्याख्यानावरण को लिया था। अप्रत्याख्यानावरण के बाद अब यहाँ कुछ ग्रुप वाली प्रकृति ले रहे, हाँ तो अभिनिबोधि ज्ञानावरण और परिभोगांतरा है, वो एट ए टाइम लिए दो। उसके बाद चक्षु दर्शनावरण सिंगल लिया, ये कैसे लिए, अनंत गुणाहीन, अनंत गुणाहीन देख रहे। अब जाके बाद में लब्धिसार में जो बताने वाले हैं, जो अनंत गुणा वाले हैं उनका देशघातीकरण बाद में होगा, वो मैं पढ़ के बताऊंगी, कल हमने शुरू किया था। तो दर्शनावरण के बाद तीन तीन वाले तीन जोड़िया है, यानी तीन ग्रुप से, तो शुद्ध ज्ञानावरण, अचक्षु दर्शनावरण और भोगांतरा है एट ए टाइम लिए, ऐसे तीन तीन आगे भी बताएंगे। तो कहते उसी का अपना विषय चल रहा था, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि आप कहते चक्षु दर्शनावरण का जो चक्षु दर्शन का विषय है उससे शुद्ध ज्ञान का विषय बहुत बड़ा है, तो उस आवरण का अनुभाग भी ज्यादा होना चाहिए था, ये उनका प्रश्न है। तो उसके उत्तर में कहते हैं, समाधान हम पढ़ेंगे। तो कहते यदि ऐसा है तो इस अर्थ को छोड़कर ऐसा ग्रहण करना चाहिए, यानी उसका रीजनिंग इस तरह से समझना चाहिए, यथा क्षपक श्रेणी में देशघाती बंधकरण के समय शपक श्रेणी में क्या होता है, अभी ये सभी प्रकृतियाँ कैसी है, घाती कर्मों की है, और अभी जो हम देख रहे हैं शुद्ध ज्ञानावरण वगैरह वो देशघाती प्रकृतियाँ हैं। तो देशघाती प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं, देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। अब यहाँ उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञानावरण का उत्कृष्ट जो अनुभाग होगा वो कैसा होगा?
देशघाती होगा ना,
आप ही बताओ।
नहीं, तो सर्वघाती देशघाती दोनों स्पर्धक है।
सर्वघाती होगा, उत्कृष्ट पूछ रही मैं। शुद्ध ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, तो उसमें स्पर्धक कैसे हो गए? देशघाती और सर्वघाती, उसका उत्कृष्ट क्या होगा? सरल है ना ये बात? अभी वो श्रेणी में वो सर्वघाती वाला वो तो द्विस्थानीय सर्वघाती रहा था, भले उसका चतुस्थानीय भी हो सकता है। समझ में आती ना बात? यहाँ ये जो क्षपक श्रेणी की बात उठाई है वो उत्कृष्ट अनुभाग बताने के लिए नहीं बताई है, कि वहाँ ये ऑर्डर क्यों दी है उसको समझाने के लिए उसकी बात निकाली है। संसार अवस्था में, मिथ्या दृष्टि अवस्था में, वो जो मति ज्ञानावरण का भी सर्वघाती तो चतुस्थानिक भी बंधेगा, परंतु वो जो मैक्सिमम अनुभाग में अल्प बहुत्व चल रहा है अपना, इन्हें बहुत बहु से अल्प तक जा रहे है, तो चक्षु दर्शनावरण का जो अनुभाग है उससे श्रुत ज्ञानावरण का अनुभाग अनंत गुणा हीन है। अब उसमें यही प्रश्न था उसका, इतना विषय उतना विषय, तो कहते वो रीजनिंग छोड़ दो, हम दूसरे रीजनिंग से आचार्य बता रहे हैं कि क्षपक श्रेणी में जिस ऑर्डर से देशघातीकरण होता है, क्योंकि हमने देखा था क्षपक श्रेणी के असंयम से ही वो अप्रशस्त कर्मों का घात होते होते हैं, अपूर्वकरण से वो अनुभाग कांड घात शुरू हुए थे। अब कहते हैं कि आगे चलकर नवे गुण स्थान में जब आता है तो उसका एक देशघातीकरण होता है, यानी पहले वो आठ कषाय और 16 अन्य कर्मों प्रकृतियों का नाश होने के बाद ये तो ये जो देशघाती प्रकृतियां है ना, उनमें सर्वघाती देशघाती दोनों थे, उनका देशघातीकरण होता है अनुभाग की अपेक्षा। पहले कैसा था? सर्वघाती भी बनता था, पर वो तो कैसा बनता था? तो द्विस्थान वाला बनता था, श्रेणी की बात है, श्रेणी में चतुस्थान अनुभाग नहीं है, द्विस्थान था परंतु सर्वघाती था। यानी द्विस्थान किसको कहेंगे हम? नाम नाम लता और दारू, यानी दारू का अनंत बहुभाग जो सर्वघाती था वैसा भी बनता था। अब यहां से आगे क्या होगा? द्विस्थानिक बंधेगा परंतु वो देशघाती रूप से बंधेगा, इसको कहते देशघाती बंध। अनुभाग का देशघातीकरण होता है, बंध का अनुभाग बंध का देशघातीकरण होता है, किसमें? इन देशघाती प्रकृतियों में। देखो हमेशा पहले तो मिथ्यात्व में तो देशघाती चतुस्थान सर्वघाती तो चतुस्थानिक भी बनता था, अभी हम श्रेणी की बात कर रहे हैं, वहां अनुभाग घटते घटते बंध भी घटता गया, वहां पर भी सर्वघाती और देशघाती दोनों बनते थे क्योंकि प्रकृति देशघाती है, परंतु वो हीन होते होते द्विस्थानिक सर्वघाती रहा था। अभी यहां इससे आगे वो सर्वघाती रूप से बंधेगा ही नहीं,
सर्वघाती स्पर्धक की नहीं होती,
बंधेगा नहीं।
अच्छा, नया बंध देश का।
वो सत्ता में क्या होता है उसकी भी चर्चा है वहां पर, अभी अपना वो विषय नहीं है, लब्धिसार का अपना विषय नहीं, अपना विषय क्या है, ये क्रम क्यों लिया ये अपना विषय है। तो देशघातीकरण में उन्होंने एक विशिष्ट ऑर्डर बताई, तो उस ऑर्डर से भी पता चलता है कि किसका अनुभाग कितना है, जिसका ज्यादा अनुभाग है तो उसको बाद में उसको देशघातीकरण किया जाता है। तो अभी यहां हम पहले पढ़ेंगे पूरा पैराग्राफ, देखो समाधान सेकंड लाइन, क्षपक श्रेणी में देशघाती बंधकरण के समय, इसका अर्थ समझ में आया? देशघाती बंधकरण, देशघातीकरण पर बंध के लिए वो लगाया है, और अभी भी द्विस्थानिक है, बाद में वो एक स्थानिक देशघाती हो जाता है, दारू का अनंत वाभाग, यानी द्विस्थानिक देशघाती है, यानी दारू का अनंत वाभाग, यानी अभी सर्वघाती बंधेगी ही नहीं यहां से आगे।
तो पहले हमने देखा था कि छठे गुण स्थान से सभी प्रकृति देशघाती बनती है, विषालीय बनती है। एक बार मेरे को इसे
आप मोहिनी की बात आपको याद है, देशघातीकरण पांचवें गुणस्थान से होता है मोहिनी में, उसकी बात अभी यहां नहीं है। देखो क्षपक श्रेणी में देशघाती बंधकरण के समय जिसका अनुभाग बंध पहले ही देशघाती हो गया है उसका अनुभाग स्तोक होता है। क्या कहा? वहां जिस ऑर्डर से बताइए ना, कौन कौन सी प्रकृतियों का अनुभाग पहले देशघाती हो जाता है तो उनमें अनुभाग कम है इसलिए वो पहले देशघाती होता है, जिनमें अधिक अनुभाग है वो बाद में, उसका नंबर बाद में आता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी अनुभाग ज्यादा था इसलिए उसको बाद में आता है। तो अभी हम कैसा ले रहे हैं, अनंत गुणाहीन हीन हीन ऐसे जय, यहां जिसका नाम लास्ट आएगा उसका वहां देशघातीकरण पहले होगा। समझ में आई बात? तो कहते अभी, और जिसका अनुभाग बंध पीछे देशघाती होता है यानी बाद में होता है उसका अनुभाग बहुत होता है इस नियम के अनुसार। ये नियम बताया और उसका रीजनिंग बता रहे, इन तीन प्रकृतियों का अनुभाग बंध चक्षु दर्शनावरणी के अनुभाग बंध से पहले ही देशघाती हो जाता है। यथा, अभी यथा ने अभी पूरा ही बताएंगे यहां पर, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात बहुभाग तक इनका अनुभाग बंध सर्वघाती बनता है। क्या कहा? क्योंकि जो मैक्सिमम है उसको हम कहेंगे वो स्थान कहे, उसमें देशघाती भी है परंतु वो सर्वघाती का जो मैक्सिमम है उसी को कहेंगे, तो सर्वघाती रूप से बंध है वहां पर। फिर वहां मनपरे ज्ञानावरण, वहां इन्हें कहां पर लक्ष्मी नवे के जो संख्यात बहुभाग बीतने पर जहां देशघातीकरण शुरू हो जाता है वहां की बात है। मन परे ज्ञानावरण और दानांतराय को बंध की अपेक्षा देशघाती रूप करता है, यानी सबसे पहले इसको देशघाती करते हैं। अब हम जो नंबरिंग लगेंगे उसमें मन परे ज्ञानावरण उसको लास्ट में रखेंगे। समझ में आई बात? अभी रीजनिंग समझ में आ रही? हाँ। इससे आगे अंतर्मूर्त जाकर, अंतर्मूर्त क्योंकि दो जो देशघातीकरण होते हैं उसमें वो संख्यात हजार अनुभाग कांड की स्थिति कांड घात वगैरह होते वो बात आती हमेशा। अवधि ज्ञानावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय और लाभांतराय, इन तीनों प्रकृतियों को बंध की अपेक्षा देशघाती रूप करता है। पश्चात अंतर्मूर्त जाकर श्रुत ज्ञानावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय और भोगांतराय, इन तीनों को बंध की अपेक्षा देशघाती रूप करता है। पश्चात अंतर्मूर्त जाकर चक्षु दर्शनावरणीय को बंध की अपेक्षा देशघाती रूप करता है, अकेला चक्षु दर्शनावरण सिंगल लिया। पश्चात अंतर्मूर्त जाकर आभिनिबोधि ज्ञानावरणीय और परिभोगांतराय, इन दोनों प्रकृतियों को बंध की अपेक्षा देशघाती रूप करता है। और पश्चात अंतर्मूर्त जाकर वीर्यांतराय को बंध की अपेक्षा देशघाती करता है। अब यहाँ लास्ट में वीर्यांतराय को लिया, अब इसमें पहले लिया, पर पहले किसके साथ लिया? केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, असाता और वीर्यांतराय को, तो उसका नाम यहाँ क्यों नहीं लिया, उसको अलग अलग क्यों लिया? यानी ये देशघातीकरण में उनको क्यों नहीं लिया? वो सर्वघाती, वो कभी देशघाती नहीं हो गए। समझ में आई बात? लब्धि सार में उसको क्यों नहीं लिया, ये प्रश्न हो सकता है ना, अकेले वीर्यांतराय को क्यों लिया? और यहाँ बंद की बात है, ऐसा था तो वहां बनती नहीं थी, केवल ज्ञान और दर्शन बनती थी, मगर वो हमेशा सर्वघाती बंधेगी। प्रश्न क्या उठ सकते हैं उसको हमको सोचना है। अभी ये नंबरिंग ऐसा क्यों, ये ख्याल में आए, पहले वीर्यांतराय, फिर वो मति ज्ञानावरण, वो परिभोगांतराय, फिर चक्षु दर्शनावरण, इस तरह से। अभी आगे बढ़ते हैं, हम 56 पेज पर, मैंने कल लब्धिसार में से भी पढ़ के यही सुनाया था, उन्होंने वही बात बताई है। 56 पेज पर सेकंड लाइन, पहली लाइन पढ़ते, इस कारण, यानी जो उन्होंने देशघातीकरण का जो ऑर्डर बताई है, इस कारण चक्षु दर्शनावरणी का अनुभाग इन तीन प्रकृतियों के अनुभाग से अनंत गुणा है, इस अर्थ की, यानी ये रीजनिंग जो बताना है, बारह देशघाती बंध प्रकृतियों के संबंध में सर्वत्र योजना करनी चाहिए। ये जो अभी हमने पहले कौन से देखी, पहले तो मति ज्ञानावरण, परिभोगांतराय, चक्षु दर्शनावरणीय, फिर आगे ये तीन तीन के तीन जोड़ी लिए, तो सर्वत्र यही योजना करनी चाहिए, ये उसका अर्थ होता है। देखो हमने प्रकृतियों को नंबरिंग किया था तो 37 तक किया था, अभी अवधि ज्ञानावरण को 38 नंबर देना, 39-40, लाभांतराय को 40 तक आ जाए। अब पहले सूत्र पढ़ेंगे, ओहि नानावर्णीयम ओहि दंसनावर्णीयम लाहंतरायम च तिन्नीवी तुल्लाणी अनंत गुणहीनाणी, उनसे अवधि ज्ञानावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय और लाभांतराय, ये तीनों ही तुल्य होकर अनंत गुणे हीन है।
जो ऊपर जो 12 देश का थी प्रकृतियों की बात की, वो 12 कौन सी कौन सी लेती,
अभी हमने बताया तीन की तीन बताई ना, तीन त्रिक नहीं, 12 देश, सॉरी
12 देश का थी, वहाँ पे चार ज्ञानावरण,
देखो चार ज्ञानावरण है,
दर्शनावरण,
तीन दर्शनावरण है,
सात
हुए और 5 अंतराय है, क्योंकि वीर्यांतराय अलग पड़ा है उसमें से, परंतु उसको लेना इसमें 5 अंतराय में, यानी 4 ज्ञानावरण, 3 दर्शनावरण, 5 अंतराय, ये 12। अब यहाँ अनुभाग के उनके नंबरिंग में उन्होंने स्थान वृद्धि वगैरह भी बताया, उसका अनुभाग समान बताने के लिए बताया, इसका तो सवाल ही नहीं है, यहाँ तो बंध की बात ही नहीं है, फिर बंध की उच्छित्ति तो कब हुई, स्थान वृद्धि बंध विच्युति कहाँ हुई, कहाँ हुई, कहाँ हुई, दूसरे में, और क्षय कहाँ हुआ, नवे में 16 प्रकृतियों का क्षय होता था, और उदय की विच्युति कहाँ हुई, देखो देखो ये अभी ऊपर हमने पढ़ा 96, अभी हिंदी में पढ़ेंगे, उनसे अवधि ज्ञानावरणी, अवधि दर्शनावरणी, लाभांतरा, ये तीनों ही तुल्य होकर अनंत गुणी हीन है, इसका कारण पहले बताए हैं, अभी बताए ना ये 12 प्रकृतियों के समझना, इसलिए यहाँ उसका कथन नहीं करते हैं। अभी 97 नंबर, मणपज्जव नानावर्णीयम थीण गिद्धि दानंतरायम च तिन्नीवी तुल्लाणी अनंत गुणहीनानी, उनसे मन पर्य, वो न के आगे वो विसर्ग लगाना, मन पर्य ज्ञानावर्णीय, स्त्यान वृद्धि और दानांतराय, ये तीनों ही तुल्य होकर अनंत गुणी हीन है, इनके उत्कृष्ट अनुभागों की कंपैरिजन चल रही है। अब नंबरिंग कर देना इसको, 41, 42 और 43। इसका कारण सुगम है। अब उसके पश्चात नौ से वेयो वेदो अनंत गुणहीनो, उनसे नपुसक वेद प्रकृति अनंत गुणहीन है, क्योंकि वह नौ कषाय है, अरदि अनंत गुणहीना, उससे अरति अनंत गुणी हीन है, क्योंकि इनमें प्रकृतिगत विशेषता है, यथा नपुसक वेद का उदय, यानी उसके अनुभाग में एक वेरिएशन है, इसे कहते ईंटों के पाक के समान है, ईंटों का पाक समझते हैं, ईंट वो भट्टी में तपाते हैं ना,
हाँ,
तो जल्दी ठंडी नहीं होती है, इसको कहते ईंटों का पाक के समान, ये नपुसक वेद का जिसके उदय है उसके परिणामों में जो संक्लिष्टता होती है वो जल्दी नहीं मिटती है, लंबे काल तक चलती है, परंतु अरति तो मात्र नहीं रमणे रूप भाव को उत्पन्न करने वाली है, इस कारण वह नपुसक वेद की अपेक्षा अनंत गुणी हीन है। अब कहते 57 नंबर पर आना, पेज नंबर पर 100 नंबर का सूत्र, सोगो अनंत गुणहीनो, उससे शोक अनंत गुणाहीन है क्योंकि वह अरति पूर्वक होता है। शंका, वह अरति पूर्वक कैसे होता है? उसका समाधान, क्योंकि अरति के बिना शोक नहीं उत्पन्न होता है। यानी कोई अणगमो था ने, अरति यानी क्या होता है, तो शोक भी हो जाता है। कहते भयम अनंत गुणहीनम, उससे भय अनंत गुणाहीन है क्योंकि भय के उदय काल की अपेक्षा शोक का उदय काल बहुत पाया जाता है। यानी देखो, ये तो भय जो उदय जो होता है, भय और जुगुप्सा तो निरंतर बंदी है, बंद हर समय चलता है। कब से? मिथ्यात्व से लेकर कहाँ तक? आठवें के अंत तक, बराबर। यानी वो ध्रुव बंदी है, परंतु उदय कैसा है? या भय का होगा, या जुगुप्सा का होगा, या दोनों का होगा, या दोनों का भी नहीं होगा। और अंतर अंतर मुहूर्त में ये नियम से पलटता ही रहता है, तो भय का उदय अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता, ये कहना चाहते। और शोक का भले अंतर्मूर्त भी हो, क्यों न हो, तो वो लंबा चलेगा। शंका, चूंकि शोक उत्कृष्ट से 6 मास पर्यंत ही होता है, परंतु भय का काल नारकियों में 33 सागरूपम प्रमाण है। ये तो शंकाकार पूछ रहे अपनी ओर से, अतएव शोक की अपेक्षा भय अनंत गुणा क्यों नहीं होता? समाधान, नहीं, क्योंकि नारकियों में भी भय का काल अंतर्मूर्त मात्र ही उपलब्ध होता है। कल हमने वो असाता के बारे में पूछा, बताया था आपको, किसी जीव को असाता का इतना लंबे काल तक उदय चलेगा, परंतु वो भय इतने काल तक रहेगा ऐसा नहीं, भय जुगुप्सा वो दोनों है दोनों नहीं, ऐसा चेंज होता रहेगा। 102 नंबर, दुगुंचा अनंत गुणहीना, वो तो शंकाकार ने पूछा था, वो रॉन्ग है। उससे जुगुप्सा अनंत गुणहीन है, इसका कारण प्रकृति विशेष है। हम देखते हैं नपुसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये हमेशा हम प्रकृति अभी ऐसे याद करते हैं ना, तो उसमें भी कुछ विशिष्ट रीजनिंग होता है। ये हो गया। अब कहते हैं निद्रा निद्रा अनंत गुणहीना, उससे निद्रा निद्रा अनंत गुणहीन है क्योंकि किसी भी जीव के कहीं पर ही उसका उदय देखा जाता है। अब इस ज्ञान वृद्धि तो पहले बताई थी उन्होंने, मन परिज्ञानावरण के समान बताए थे। कहीं पर नहीं, कभी कभी किसी जीव के, यानी सर्वत्र नहीं, कहीं पर ही उसका उदय है। तो ज्ञान वृद्धि निद्रा निद्रा, वो तो जागृत अवस्था में तो उदय नहीं होगा। निद्रा भी 5 प्रकार की है, यानी जब सो रहा है तो हर बार उसको निद्रा का उदय तो अंतर्मूर्त में पलटेगा उसको, इसलिए सभी जीवों को नहीं है, कहीं कहीं किसी को होगा। जैसे ये 3 निद्राएं किसको नहीं होगी? स्त्यान बुद्धि निद्रा निद्रा और प्रचला किसको नहीं होती है? क्या उदय 6ठे तक है, देवों के नहीं है, नारकियों के नहीं है। हमने बोला ना, यहाँ सो लो अभी।
नारकियों को भी नहीं होती है,
और अपर्याप्त अवस्था में नहीं होती है। हमने ये बात देखी थी कि अपर्याप्त में नहीं होती है, शायद भोगभूमि की मुझे याद नहीं, अभी भोगभूमि में भी नहीं होगी क्या? याद नहीं मुझे, भोगभूमि में अभी याद नहीं है, पर देवनारकी में तो होती ही नहीं, उदय नहीं, प्रचला और अपर्याप्त अवस्था में किसी को नहीं होती है, पर्याप्त अवस्था में होती है। तो यहाँ तो निद्रा निद्रा कहीं पर ही होते, किसी जीव को कहीं पर होती है, इसका हमेशा नहीं होगा। पहला अनंत गुणहीना, उससे प्रचला अनंत गुणहीन है क्योंकि लार बहने से थोड़े काल से संबंध रखने वाला चैतन्य का अभाव देखा जाता है, परंतु निद्रा निद्रा के उदय से उसकी उपलब्धि नहीं होती। यानी प्रचला निद्रा निद्रा का निद्रा निद्रा ज्यादा अनुभव वाली है, प्रचला प्रचला कम, यानी वो लाइटर नीड इनकी तरफ ले लेना है। निद्रा अनंत गुणहीना, उससे निद्रा अनंत गुणहीन है, क्योंकि इसके उदय से सचेतन के समान निद्रा उपलब्ध होती, यानी कुछ जागृत अवस्था भी है और कुछ नींद है, इस तरह से। पहला अनंत गुणहीना, उससे प्रचला अनंत गुणहीन है, क्योंकि इसके उदय से बोलते हुए, बैठे हुए अथवा चलते हुए जीव के सिर का संचार बहुत स्तोग देखा जाता है। ये क्या कहना चाहिए, यानी वो बोलते हुए ऐसा हम ना कहते नींद आ रही ऐसा लगता है, बोलना चल रहा है परंतु फिर थोड़ा सा डल हो जाता है, ऐसा कुछ होगा सिर का संचार। हाँ, अजस कित्ती नीचा गोदम च दो भी तुलनानी अनंत गुणहीनानी, उससे अयश कीर्ति और नीच गोत्र ये दोनों प्रकृतियां तुल्य होकर अनंत गुणहीन है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है और स्वभाव दूसरों के प्रश्न के योग्य नहीं होता। अरे नंबरिंग करके आए क्या आप?
नीच गोत्र 54 है।
अच्छा, मैंने मेरा रह गया डालना 45। प्रसला में 52 था ना, यश कीर्ति और नीच गोत्र
54।
हाँ, यश कीर्ति और नीच गोत्र 54 तक आ गए। अब उसमें निरय गई अनंत गुणहीना, उनसे नरक गति अनंत गुणहीन है, यानी नरक गति का जो उत्कृष्ट अनुभाग है उसकी बात कर रहे हैं। 55 नंबर आया, क्योंकि वह नारक पर्याय को उत्पन्न कराने वाली है। तिरिक्ख गई अनंत गुणहीना, उससे तिरियक गति अनंत गुणहीन है। देखो ये दोनों ही अशुभ प्रकृतियां हैं, नरक गति और तिरियंच गति। 56 नंबर, क्योंकि देखो नरक गति तिरंज गति अशुभ प्रकृतियां हैं, देवगति मनुष्य गति शुभ थी, उसका अनुभव कितना अनंत गुना, बाद में हमने कितने नीचे आ गए अनंत गुणाहीन करते करते, क्योंकि देवगति को बहुत पहले लिया था हमने, कहाँ पर लिया था, साता, फिर वो यश कीर्ति और उच्च गोत्र, और फिर देवगति लिए थे, फिर वो कारवान शरीर वगैरह वगैरह लिया था, और औदारिक शरीर के पहले मनुष्य गति लिया था, और यहाँ आकर नरक गति और तिरंज गति ले रहे। हाँ, इतना नीचे आकर वो प्रशस्त है ना, उसका मैक्सिमम अनुभाग भी कम है। तो कहते तिरक गति अनंत गुणहीन है, क्योंकि अब नरक गति तिरक गति दोनों ही अप्रशस्त है, इसमें अनंत गुणा का डिफरेंस क्यों है? तो कहते उसमें नरक गति के समान 33 सागरोपम काल तक फल उत्पन्न कराने की शक्ति नहीं है, अथवा वह नरक गति के समान दुख की कारण नहीं है। ये दोनों उसके रीजनिंग बताए, यानी नरक गति की अपेक्षा ये कम अप्रशस्त, इस तरह से ले सकते उसको। इत्थि वेदो अनंत गुणहीनो, स्त्री वेद अनंत गुणाहीन है, ये 57 नंबर है, क्योंकि वह अरति गर्भित कंडे की आग के समान दुखोत्पादक है। वहां ईट का पाक कहा था, यानी तपे हुए ईट के समान, अब ये कंडे की आग, कंडा समझते हैं? छाना, छाना कुछ कहते आप गुजराती में, क्या कहते छाना? हाँ, मराठी में गौरी। हाँ, वो तो हाँ गौरिया, काउडंग से वो बनाते हैं ना सूखा हुआ, उसको कंडा कहते हैं।
इसे क्यों बताया यार कि गर्भी,
उसमें दुखोत्पादक होने से उसमें ले लिया कुछ है ना, अरे गब्बम। देखो कंडे की आग के समान दुख उत्पादक है। वहां ज्यादा दुख था किसमें? नपुसक वेद में। यहां पर भी पुरुष वेद की अपेक्षा से अधिक दुख वाला है। अब पुरुष वेद अनंत गुणहीन हो, उससे पुरुष वेद अनंत गुणाहीन है क्योंकि वह त्रोणाग्नि के समान थोड़े दुख को उत्पन्न करने वाला है। जैसे तृण यानी सूखी हुई घास जो है वो जलता है मगर मिट भी जाता है, वैसे ये परिणाम कम दुख उत्पन्न करने वाले हैं। 59 नंबर पर रदि अनंत गुणहीना, उससे रति अनंत गुणहीन है क्योंकि वह माया लोभ और तीन वेद पूर्वक होती है। अब नंबरिंग कर देते हैं 58, 59 हो गया, कितने हो गए?
59
हो। हाँ सूत्र में 47 नंबर। अब हस्यम अनंत गुणहीनम, उससे हास्य अनंत गुणाहीन है क्योंकि वह रति पूर्वक होता है। देवाउम अनंत गुणहीनम, उससे देवायु अनंत गुणहीन है। देखो गतियों को कहा लिया और आयुओं को कहा लिया है ना, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। निरयाउम अनंत गुणहीनम, उससे नारकायु अनंत गुणहीन है कारण कि वह देवायु की अपेक्षा अप्रशस्त है। मनुष्यायु अनंत गुणहीनम, उससे मनुष्यायु अनंत गुणहीन है। नंबरिंग करते हैं ना 60, 61, 62, 63। कारण कि नारकेय के समान मनुष्यायु का बहुत समय तक उदय नहीं पाया जाता। शंका, चूंकि नारकायु की अपेक्षा मनुष्यायु प्रशस्त है अतः वह उससे अनंत गुणी क्यों नहीं होती? प्रश्न है ना, हमेशा हमने प्रशस्त प्रशस्त में ये रीजनिंग देखा था। समाधान, नहीं, क्योंकि यहाँ प्रशस्तता से उत्पन्न अनुभाग की अपेक्षा बहुत समय रहने वाले उदय निमित्तिक अनुभाग की प्रधानता है। हर एक जगह जो उसका रीजनिंग अलग अलग बताया, लंबे काल तक उसका उदय रहता है ये बात है। तिरिक्खायु अनंत गुणहीनम, उससे तिर्यगायु अनंत गुणहीन है कारण कि मनुष्यायु की अपेक्षा तिर्यगायु के अप्रशस्तता देखी जाती है। देखो देवायु नरकायु में अप्रशस्त की बात ली, मनुष्यायु तिर्यगायु में वही रीजनिंग बताया, पर नरकायु मनुष्यायु में वो लंबे काल की बात बताई उन्होंने। इस प्रकार उत्कृष्ट 64 पद वाला महादंडक समाप्त हुआ। अभी ये जो हमने सारे जो महादंडक में अधिक से शुरुआत की थी और मिनिमम तक आ गए हैं, वो सारे उत्कृष्ट के साथ उत्कृष्ट की कंपैरिजन की है। यहाँ तक बात समझ में? और ये बंध की बात है, सत्व की बात नहीं है। अब 60 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। अब इस अल्प बहुत्व से सूचित होने वाला उत्तर प्रकृतियों का, पहले हमने सारे जो अल्प बहुत्व थे मूल प्रकृतियों में देखे थे, जघन्य का, उत्कृष्ट का वगैरह वगैरह। अब यहाँ उत्तर प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग विषयक, उत्कृष्ट के ही बारे में स्वस्थान, वो स्वस्थान लिखा है, स्वस्थान अल्प बहुत्व कहते हैं। स्वस्थान किसको कहना? अलग, हाँ, तो ज्ञानावरण की जो अपनी पांच प्रकृतियां है उसमें अल्प बहुत्व बताएंगे उसको, और उसमें भी उत्कृष्ट का उत्कृष्ट के साथ अल्प बहुत्व कहेंगे, इनमें से निकालेंगे जो अभी हमने पढ़ा है उसके अंदर से। यथा, अभी इसमें नंबरिंग करो हर एक का अपना अपना, एक एक मूल प्रकृति का अपना अपना उत्तर प्रकृतियों में। जैसे ज्ञानावरण में 5 नंबर लगेंगे तो केवल ज्ञानावरण सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उससे अभिनिबोधि ज्ञानावरणीय अनंत गुणीहीन है, उससे श्रुत ज्ञानावरणीय अनंत गुणीहीन है, उससे अवधि ज्ञानावरणीय अनंत गुणीहीन है, और उससे मनपर्य ज्ञानावरणीय अनंत गुणीहीन है। जब 64 वाला जो दंडक था तो उसमें हमने वो जो अभिनिबोधि के साथ वो परिभोगांतराय वगैरह वगैरह को लिया था, अवधि दर्शनावरण के साथ अवधि ज्ञानावरण, वो सब उसकी बात यहाँ नहीं करनी अपने, एक एक प्रकृति में अलग अलग लगाना है। अब केवल दर्शनावरण में लगाएंगे, सबका अपना अपना अलग अलग, ये ज्ञानावरण के ऊपर हो गए, स्वस्थान का ना उसको, केवल दर्शनावरणीय सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उससे चक्षु दर्शनावरणीय अनंत गुणीहीन है, उससे अचक्षु दर्शनावरणीय अनंत गुणीहीन है, उससे अवधि दर्शनावरणीय अनंत गुणीहीन है, उससे स्त्यान वृद्धि अनंत गुणीहीन है, उससे निद्रा निद्रा अनंत गुणीहीन है, उससे प्रचला प्रचला अनंत गुणीहीन है, उससे निद्रा अनंत गुणीहीन है और उससे प्रचला अनंत गुणीहीन है। वैसे देखा जाए तो उसमें तो केवल दर्शनावरणीय और सारी निद्राएं ये सर्वघाती है, और बाकी देशघाती होने पर भी सर्वघाती तो स्पर्धक होगी उसके अंदर। अब वेदनीय की बात,
ये तो भक्ति अपेक्षा ही
है। देखो मैक्सिमम अनुभाग कब होगा, बंध बिना होगा क्या? यहाँ तो बंध का ही अल्प बहुत्व है, सत्ता का नहीं लगा रहे। देखो मैक्सिमम तो बंध की अपेक्षा आएगा, बंध होने पर ही सत्ता होगी। हाँ जघन्य के लिए वो बंध बंध से भी जघन्य कर देता है, उसकी अपेक्षा वहां लगेगी, पर यहाँ जो दंडक बताए हैं वो बंध के ही बताए, ये नक्की है। अब वेदनीय में साता वेदनीय सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है और उससे असाता वेदनीय अनंत गुणी हीन है। अब मोहनिया, ज्ञानावरण हुआ, दर्शनावरणी हुआ, वेदनीय हुआ, अभी मोहनिया। मिथ्या तो प्रकृति सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उससे अनंतानुबंधी लोभ अनंत गुणाहीन है। अब लोभ को अनंत गुणाहीन कहा, फिर माया क्रोध और मान विशेषहीन कहेंगे, फिर आगे का संज्वलन लेगी, फिर प्रत्याख्यान, फिर अप्रत्याख्यान। तो ये लोभ हुआ तीन नंबर पर, उससे अनंतानुबंधी माया विशेषहीन है, उससे अनंतानुबंधी क्रोध विशेषहीन है, उससे अनंतानुबंधी मान विशेषहीन है। अब जब अनंतानुबंधी से संज्वलन में जाना है तो अनंत गुणाहीन कहेंगे, उससे संज्वलन लोभ अनंत गुणाहीन है, उससे संज्वलन माया विशेषहीन है, उससे संज्वलन क्रोध विशेषहीन है और उससे संज्वलन मान विशेषहीन है। देखो पहला मिथ्या तो आया, फिर आगे के चार अनंतानुबंधी के आए और आगे के चार संज्वलन, आठ नौ हो गए ना। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, उसमें 10, 11, 12, 13 लिख देना, लोमा क्रोमा। और अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क यानी 14, 15, 16, 17 विषय में कहना चाहिए। लास्ट में क्या आएगा 17 नंबर पर, अप्रत्याख्यानावरण मान से नपुसक वेद अनंत गुणाहीन है। हमने उसमें देखा ना अरति शोक भय जुगुप्सा, उससे अरति अनंत गुणीहीन है, उससे शोक अनंत गुणाहीन है, उससे भय अनंत गुणाहीन है, उससे जुगुप्सा अनंत गुणीहीन है। अभी 23 नंबर पर, उससे स्त्रीवेद अनंत गुणाहीन है, उससे पुरुषवेद अनंत गुणाहीन है, उससे रति अनंत गुणीहीन है और उससे हास्य अनंत गुणाहीन है। ये उसके 26 हो गए, मोहिनी के 26 हो गए। अब आयु के चार आयुओं में नपुसक ने हमने अप्रत्याख्यान के बाद लिखा था 18 नंबर पर नीचे से दूसरी लाइन, वो रह गया क्या आपका नंबरिंग? हाँ वहाँ 18 नंबर डालना है। हाँ हो गया, तो हम आगे बढ़ेंगे। मोहिनी का हो गया 26 आ गए क्या नंबर? ये मेरा मनीषा से प्रश्न है, मनीषा या ब्रह्मा आप भी दे दो उत्तर। यह सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति को क्यों छोड़ा मिथ्या मोहनीय में से? वो बनती नहीं है, वो तो मिथ्या तो में से बाद में तैयार होती है, जब पहली बार वो सम्यक तो होती है। बंद की ही बात है।
खाली
आप क्वेरी करो ना, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके लिए। इसीलिए आपको माइक दिया ना स्पेशल. अब नाम कर्म. अब देखो वहां तो आयु हो गया ना अभी. सॉरी, अच्छा हमने केवल पढ़ा था अभी आयु की बात. हाँ देखो, एक नंबर पर देवायु सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है. हमने वो नंबरिंग में टॉप में लिखा था उसको. उससे नारकायु अनंत गुणीहीन है, उससे मनुष्यायु अनंत गुणीहीन है, और उससे तीर्यगायु अनंत गुणीहीन है. अब नाम कर्म. अभी वहां तो 64 सूत्र 64 में तो इनके नाम नहीं थे. अब यहाँ तो विस्तार से बताएंगे गति यानी गत. अभी इसमें भी स्वस्थान बताएंगे, चार गतियों में बताएंगे, पांच जातियों में बताएंगे, शरीरों में बताएंगे, संस्थानों में बताएंगे, सहननों में बताएंगे, आपस में बताएंगे. पूरे की पूरे उसमें 93 में अल्प भूत तो नहीं लगा रहे. देखो पढ़ेंगे अभी नाम कर्म में. अभी चार गतियों में से ये तो ऐसे आसान लगेगा. देखो एक नंबर पर देव गति सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उससे मनुष्य गति अनंत गुणीहीन है, उससे नरक गति अनंत गुणीहीन है, उससे तीर्यक गति अनंत गुणीहीन है. अब जाति, गति हुई जाति, ये गति हुई. अब जाति, जाति में पंचेंद्रिय जाति सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है. ये पंचेंद्रिय जाति ये शुभ प्रकृति है, और बाकी सब एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरेंद्रिय कैसी है? अप्रशस्त है. तो कहते पंचेंद्रिय जाति सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उससे एकेंद्रिय जाति अनंत गुणीहीन है. ऐसा नंबर नहीं लगा कि पंचेंद्रिय फिर चतुरेंद्रिय फिर तीनद्रिय द्विंद्रिय, ऐसा नहीं लिया. बाकी सभी अशुभ है, तो अशुभ में से ज्यादा अशुभ कौन सी है? वो एकेंद्रिय है, इसे उसको ऐसा लिया. नहीं तो आप लगे पंचेंद्रिय के बाद चतुरेंद्रिय का नंबर छोड़कर एकेंद्रिय को क्यों लिया? पंचेंद्रिय वाली शुभ थी और ये चारों ही अशुभ है. अब अशुभ में पहला नंबर किसका लगाना? एकेंद्रिय जाति का, जो टॉप मोस्ट है ना, अधिक अनुभाग वाला है. देखो पंचेंद्रिय जाति हुई, उससे एकेंद्रिय जाति अनंत गुणीहीन है, उससे द्विंद्रिय जाति अनंत गुणीहीन है, उससे तीनद्रिय जाति अनंत गुणीहीन है, और उससे चतुरेंद्रिय जाति अनंत गुणीहीन. गति जाति के बाद शरीर, हमने देखा था वो तो यश कीर्ति उच्च गोत्र के बाद देवगति और फिर कार्मण शरीर का नंबर आया था पहले. तो एक नंबर पर कार्मण शरीर सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उससे तेजस शरीर अनंत गुणाहीन है, उससे आहारक शरीर अनंत गुणाहीन है, और उससे वैकृत शरीर अनंत गुणाहीन है, उससे औदारिक शरीर अनंत गुणाहीन है. अभी संस्थानों में लगाएंगे. देखो अभी इसमें भी यही विचार करना जैसे हमने जातियों में लगाया था. देखो अभी आसान लगेगा आपको, क्योंकि प्रशस्त कौन सी? एक ही है, सम चतुर संस्थान प्रशस्त है, और बाकी सब अप्रशस्त है. तो प्रशस्तों में पहले लेंगे अधिक अनुभाग में, अप्रशस्तों में सबसे हाँ, तो उल्टा क्रम लगाना उसमें. हाँ देखो एक नंबर पर समचतुर संस्थान सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, और फिर दो नंबर पर उससे हुंडक संस्थान अनंत गुणाहीन है. अब उल्टे क्रम से चले ना, उससे वामन संस्थान अनंत गुणाहीन है, उससे कुब्जक संस्थान अनंत गुणाहीन है, उससे स्वाति संस्थान अनंत गुणाहीन है, और उससे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान अनंत गुणाहीन है. जब हम संस्थानों के नाम लेते हैं तो कैसा लेते हैं? पहला नाम समचतुर संस्थान, फिर नगरोध परिमंडल, और फिर स्वाति कुब्जक वामन और हुंडक. समझ में नहीं ये ऑर्डर क्यों रखी है? ये रीजनिंग समझना बहुत आसान है. पहले प्रशस्त को लेना है, फिर अप्रशस्तों में अधिक अप्रशस्त का पहला नंबर लगाना. अब अंगोपांग, हमेशा शरीर के बाद संस्थान लेते हैं, अंगोपांग लेते हैं, बाद में सहनन लेते हैं. अंगोपांग में जैसे शरीरों के हमने देखे थे, कार्मण और तेजस में अंगोपांग होते नहीं है, अब रहे तीन. तो पहले नंबर पर आहारक शरीर अंगोपांग सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उससे वैक्रियक शरीर अंगोपांग अनंत गुणाहीन है, और उससे औदारिक शरीर अंगोपांग अनंत गुणाहीन है. अब बताएंगे सहनन। हाँ, अभी सहनन में भी ऐसा कौन लगाना चाहते हैं? वज्र औषध नारा सहनन को पहला नंबर लेंगे। हाँ, अभी उल्टे यानी अप्रशस्त को पहले लेना, असंप्राप्त रूपा टीका। देखो देखो, आप लिख लो एक नंबर पर कौन सा आया, वज्र ऋषभ नाराज सब के सहनन तो लगाएगा। हाँ, दूसरे नंबर पर असंप्राप्त रूपाटिका, तीसरे नंबर पर कीलित, फिर अर्धनाराज नाराज और वज्र नाराज। नहीं, वज्र वृषभ नाराज लिया था, अभी लास्ट में वज्र नाराज। छह हो गए ना। ये सब सहनन वगैरह हो गए। अब प्रशस्त और अप्रशस्त में प्रशस्त वर्ण चतुष्क सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है और उससे अप्रशस्त वर्ण चतुष्क अनंत गुणाहीन है। इन्हें एक और दो दो ही नंबर लगेंगे इसमें। अनुपूर्वी की प्ररूपणा गति नाम कर्म के समान है। कौन बताना चाहता है गति नाम? तेज देवगत्यानुपूर्वी पहले लेंगे, फिर नरक। नरक होगा, नरक नहीं नहीं, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी गति में, आयु में उल्टा है, आयु में उल्टा है, देवगति फिर मनुष्य गति। नरगति और तीरियन
गति,
प्रशस्तों में देवगति मनुष्य गति और प्रशस्तों में नरगति तीरियन गति, ये अनुपूर्वी की गति के समान है। ये चार हो गए, दे म न और फिर तीरियंज। अब अगुरु लघु जो चार होते हैं ना, उसमें से अगुरु लघु सबसे तीव्र अनुभाग वाला है। इससे उच्छ्वास अनंत गुणाहीन है, उससे परघात अनंत गुणाहीन है और उससे उपघात अनंत गुणाहीन है। सब युगलों में प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग तीव्र है। अभी कितने युगल है? दस है। त्रसादि चार और सिरादि छः। उससे प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणाहीन है। आगे त्रसस्थावरादि सब युगलों में प्रशस्त प्रकृतियां सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उनकी प्रतिपक्षभूत अप्रशस्त प्रकृतियां अनंत गुणी हीन है। उच्च गोत्र सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है। अभी ये गोत्र कर्म नाम हो गया गोत्र। उसमें अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास स्थिरादि छह ले सकते, उसमें वहां लिखा नहीं है। ये उन्होंने उसमें ब्रैकेट ब्रैकेट लिखा है मूल में, और यहाँ एत्तो सव जुगलानम यानी वो रिपीट हमको लगता है, उसमें ऊपर उन्होंने ब्रैकेट में डाला है। क्योंकि त्रस स्थावर आदि सब युगल कहने से वो सब दस युगल आ जाते, क्योंकि पहले हम त्रसों का नाम लेते त्रस स्थावर युगल और फिर बाद में स्थिर अस्थिर आदि युगल कहते। किसका उसकी कंपैरिजन ही नहीं, सिर और असिर में ही कंपैरिजन करना
है।
देखो देखो, पहले प्रशस्त दूसरे भी युगल आते हैं ना, विहाय गति वाला ये आ जाएगा, विहाय गति छोड़ा है ना बीच में, और ये बात ऊपर उन्होंने ब्रैकेट में डाली है। विहाय गति में भी प्रशस्त अप्रशस्त लगेंगे, त्रस्त स्थावरादि में तो सब युगल लिए, सब युगल लेने 10 युगल हो जाते हैं। ऊपर हाँ ऐसे ही देखो, बीच में एक सिंगल ब्रैकेट और अंदर ही डाला है। चलो अभी हम नीचे पढ़ते हैं। नाम के बाद गोत्र कर्म। उच्च गोत्र सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उससे नीच गोत्र अनंत गुना हीन है। अब अंतराय का लास्ट में नंबर, वीर्यांतराय सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है। हमने देखा ना केवल ज्ञानावरण दर्शनावरण के साथ इसको रखा था। उससे नीचे क्रमशः दानांतरायादिक अनंत गुणे हीन है। जैसे हम कहते ना दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, अभी इसमें उल्टे क्रम से उसका अनुभाग लेना, तो वीर्यांतराय सबसे तीव्र अनुभाग है, फिर दानांतराय, इस तरह से लाभांतराय, भोगांतराय, परिभोगांतराय। इस प्रकार स्वस्थान अल्प बहुत्व समाप्त हुआ। अब कहते हैं ये जघन्य की बात करेंगे। जघन्य अनुभाग अपेक्षा भी फिर तीन गाथाएं और बताएंगे, शायद तीन ही है ना, चार पांच और छह, तीन ही गाथाएं हैं। उत्कृष्ट में हमने क्या कहा था, उत्कृष्ट में अनंत गुणा से फिर अनंत गुणा हीन 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 लिखा। अभी सबसे जघन्य वो पहले बताएंगे, और जघन्य से बढ़ने वाली यानी सभी जघन्य का आपस में कंपैरिजन करेंगे। ख्याल में आई ना, पहला दंडक हमें 64 का देखा था, 64 प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा। अब वे ही 64 प्रकृतियां उनका जघन्य अनुभाग है, उसमें अल्प बहुतो बताएंगे। एक गाथा पढ़ेंगे अभी, थोड़ा सा अभी है, 5 मिनट। संयमन दान मोही लाभम सुद चक्षु भोग चक्षुं च आभिनिबोहि अपरिभोग वीर्यण वणो कषायाया नो कषायाया नो
कषायाया
ई के बदले या करो, नो कषायाया। देखो संज्वलन चतुष्क, अभी जघन्य अनुभाग, अभी अनुभाग जहाँ जघन्य होगा,
लोक का सबसे कम होगा। संज्वलन लोक का सबसे कम होगा ना।
हाँ देखो संज्वलन चतुष्क लिया, अभी उसमें हिना दिखता बताएंगे, नंबरिंग बाद में सूत्रों में करेंगे हम। अभी उसके जो हाँ आगे सूत्र आएंगे ना, अभी तो गाथाएं हैं। संज्वलन चतुष्क, मनःपरे ज्ञानावरण, दानांतराय, अवधि ज्ञानावरण, अवधि दर्शनावरण, लाभांतराय, श्रुत ज्ञानावरण, अचक्षु दर्शनावरण, भोगांतराय, चक्षु दर्शनावरण, आभिनिबोधि ज्ञानावरण, परिभोगांतराय, वीर्यांतराय और नौ नौकषाय, ये प्रकृतियां उत्तरोत्तर अनंत गुणी हैं। हमने तो उसमें ऐसा देखा था, उसका उत्कृष्ट अनुभाग उल्टे क्रम से देखे थे, अब उनका ही जघन्य उल्टे क्रम से देख रहे हैं। जघन्य हाँ किसका? बाद में हमने, मैंने लिख के रखा है जगन्य अनुभाग अपेक्षा करके. देखो क्योंकि ये देखो ये 65 पेज पर जो कर नहीं, आगे 64 पद वाला जघन्य महादंडक, पहला शब्द था उत्कृष्ट महादंडक और ये जघन्य महादंडक है. यानी जघन्य सबका जघन्य अनुभाग कहाँ होता है उसकी बात है. और यहाँ बंध की बात है, यहाँ सत्व की बात नहीं होगी. यानी संज्वलन का जो बंध होगा वो जघन्य की बात है. वहाँ उसका जो अनुभाग होगा तो मिनिमम बंधेगा. उससे जो अलग अलग ज्ञानावरणों का अनुभाग है वो उसकी अपेक्षा भी बताएंगे सबकी बात. ये तो इसका अर्थ हम कल देखेंगे. नीचे अभी हमने हिंदी पढ़ा ना इसको, उत्तरोत्तर अनंत गुणी हो है. यहीं पर रुकते अभी आज. जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तकनं सदा देत हूँ.